हल्के तरबियत कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाइए। जो इदारा अपने, जिसको आप टीम कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, अगर आप किसी दुनियावी इदारे में कहें तो वो कहेंगे जी आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके मुलाजिम, कोई भी कह लें, हम सारे जो भी हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े लोग जो हाफिज़े कुरान भी हैं, ग्रामर भी अच्छी, तजवीज़ भी अच्छी, ऐसी डंडी मार जाएंगे कि अल्लाह की पनाह, दिल खोटे होते हैं, लालच अंदर बड़ा हुआ, तारीफ के हरीस और सो ऑन। तो अल्लाह के नबी ने जो सिखाया हमें वो क्या था कि जो वसाइल है उसका बेस्ट यूज़ कीजिए। यकीन करें, अभी मैंने आपको नूरुल कुरान की मिसाल दी है, $1, ये तो बड़ी बात है। और नॉर्वे में रहते मिसाल हमेशा देती थी कि 1 क्रोन, और आज यूके में बैठी हूँ तो 1 पाउंड होगा, इधर पेरिस में चली जाऊँगी तो, जर्मनी में चली जाऊँगी तो यूरो बन जाएगा। 1 रुपया अपने मुल्क की करेंसी का भी अगर कोई ज़ाया कर देता है तो उस पर सवाल जवाब होता है, वो चाहे टिश्यू पेपर फालतू है, बिजली का बटन जलता रह गया। आप बग़ैर किसी नाम के जाके कॉल करके पूछ लें कि पैसा या चीज़ें या रिसोर्सेज किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं हमारे इदारों में। हमारे अंदर लखलोटी नहीं है, कमी बेशी होगी तो वो खुद ही पूरी करनी है। किसी का एक कप टूटा था, आज भी याद आ गया वो मंज़र, किसी ने दिया होगा, बिकने के लिए रखा हुआ था वहाँ, किसी साथी के बच्ची ने उसको पकड़ा, कप नीचे गिरा, टूट गया, उसी एक टूट कर अपने पर्स से शायद 10-12 कितने क्रोन डाल के सदके में डाले कि मेरी आंखों के सामने टूटा है, तो जिसने दिया था ये टी शर्ट आपको के बेच के पैसे डालने स्कूल में, वो तो कल मुझे पूछेगा। एक दफ़ा किसी साथी से बल्ब जलता रह गया था, रात को सुबह आए तो जल रहा था, पूछा था कि कितने की बिजली लगी होगी, पता भी नहीं था मुझे। जो साथी ने बताया अपने हाथ से डाली कि ये आज अगर मैं नहीं डालूंगी ना तो कल ये भी नहीं डालेंगे। तो वसाइल को पूरा इस्तेमाल करें, बहुत बरकत होगी इंशाल्लाह। आज भी यानी आप देखें इर्द गिर्द तो लोगों को मिलियंस की एड मिलती है गवर्नमेंट से, और हमारे पास अल्लाह की रहमत है बहुत। इतना कभी सोचा भी नहीं कि हमने भी कोई इस बारे में काम करना है, और जो किया भी होगा तो वो भी कोई नहीं पता क्या हुआ है, वक्त ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है इस चीज़ में कि इधर से पैसा मांगे और उधर से लें, जो है वो कर रहे हैं और बरकत ही बरकत है बस। तो तरक्की, तरबियत और वसाइल, ये 3 कोडवर्ड्स रख लीजिए अपने अंदर, इंशाल्लाह साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट बैरियर, चेजिंग इन ऑथेंटिक गोल्स। बस दफ़ा नेकियों के कामों में भी ना उन चीज़ों को गोल बना देते हैं जो मकसद नहीं होती, वो रास्ता होता है। मसलन आप कैसे, आप देखिए कि मैं टीचर हूँ आपकी, अल्लाह ने बना दिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या चाहिए, दिन ब दिन मैं अपनी स्किल्स इन्हेंस करूँ, जिस मुल्क में जाऊँ वो लैंग्वेज सीखूँ, ताकि चलो टूटी फूटी सही वहाँ भी कोई बात कर लूँ, वहाँ के लोगों को तैयार करूँ, इसी तरह से मैं अपना मुतालिया बढ़ाऊँ, बहुत अच्छी बात है ना। अब बिलफर्ज़ आप देखिए इस वक्त, आज हमारे पास जो वक्त है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सेम यही टाइम मुझे ऑफ़र हो कि मैं कुछ सीख लूँ जिससे मेरी कोई और खूबी बढ़ जाए, पॉलिश हो जाऊँ, मैं हिफ्ज़ कर लूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अपनी ज़ात को बड़ा बनाऊँ ना तो मुझे वो करना चाहिए, और अगर मैं ज़रूरत को देखूँ तो मुझे ये करना चाहिए जो मैं कर रही हूँ। हम गैर अहम मकासद की ला हासिल कोशिश करते हैं, हम बस दफ़ा ऐसी चीज़ों को गोल बनाते हैं जिसमें अपनी ज़ात में और पढ़ लूँ, मैं और चमक जाऊँ, मैं और बड़ी बन जाऊँ, कितना सवाब है, देखे इल्म हासिल करना बरकत है। देखिए जिम्मेदारियाँ छोड़कर इल्म हासिल करने में जवाबदेही है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं बस, या फिर इसमें ज़ाती बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, कहीं से मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं फ़ायदा ले लेती हूँ, तो दीन तो चलता ही रहेगा ना, इसका क्या, ये तो सारी उम्र का काम है। कभी कभी बंदा कहते हैं बस मैं 1 साल थोड़ा सा कुछ अपनी ज़ात पर आ जाऊँ, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़ात आ जाती है, दीन पीछे हो जाता है। इस्लामिक हल भी ले लीजिए, पहली बात देखिए कि इनफरादी नेकियाँ वर्सेस इज्तमाही नेकियाँ, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मेरा आपका एक मुहासबा अल्लाह के यहाँ ज़ाती तौर पर होना है, फ़र्द इंडिविजुअल लेवल पर, लहा माँ का सबत वही हम सबत, और एक मुहासबा हमारा बींग नेशन होना है। इसी तरह जो जो जिम्मेदारियाँ हमें मिली होती है ना, ये नेमत है। आपको मुझे अगर इधर कोई जिम्मेदारी मिल गई है ना, ये नेमत भी है, तो हर नेमत सुमतुसलुन्ना यौम अज़िन अनिन्नाइम। तो इस्लाम हमें नेमतों के पीछे जवाबदेही का एहसास दिलाता है। फिर एक और रुकावट है, वो क्या है कि लोग तकदीर पर राजी नहीं होते, रेजिस्टिंग फेट, किस्मत का उतार चढ़ाव है और इसी पे ही परेशान है। और इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से बनाते हैं। मसलन मेरे हालात नहीं अच्छे, कोई फौत हो गया, कोई चला गया, कोई जी गया, अब शादी है कुछ है। यानी तकदीर के जो फैसले हैं जो हमारे सब पे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चीज़ें हैं चलेंगी और मेरी एक ख़ास शक्ल है, मेरा एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड है, वो नहीं बदलेगा। लोग इससे लड़ते रहते हैं और जब आप तकदीर से रिजिस्ट करते हैं ना, तो आप अंदर से अल्लाह से नाराज़ हो चुके होते हैं और खुशी आपसे रुख्सत हो चुकी होती है। मसलन कभी मौसम, हाय मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। अच्छा जी, ख़ानदान फैमिली सेटअप, उनको भी इशू बना लेते हैं। कभी कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कभी लोगों के रवैयों पे नाराज़ है, फलां के वजह से मैं नाराज़, दूसरों के बारे में हमारे अंदर बुरे ख्यालात आते हैं। कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हम नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों पे हम अलग से डिटेल से बात करेंगे। इस वक्त सोल्यूशन ले लीजिए कि अल्लाह पे भरोसा करें, तवक्कुल करें, असबाब इख्तियार करें और वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। कह लीजिए कि फतवक्कल अल्लाह है, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला पे राज़ी रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। अगली बैरियर पे चलते हैं, वो है मल्टी टास्किंग। आई एम मल्टी टास्कर। मल्टी टास्किंग प्रोडक्टिविटी के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो क्या कि एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले लेना। देखिए, एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेना ऐसा काम है जो एक ही वक्त में बहुत सी जिम्मेदारियों को बग़ैर वक्फ़ा दिए निभाना होता है, और एक से ज़्यादा जिम्मेदारियों का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। मिसाल दे देती हूँ, जिस्म में आंखें भी हैं, कान भी हैं, जुबान भी है, दिल भी है, दिमाग भी है, ठीक है। आंखें सिर्फ देखती हैं, कान सिर्फ सुनते हैं, जुबान सिर्फ बोलती है। वैसे आप कहेंगे हमारी जुबान तो टेस्ट भी लेती है, चलिए वो भी लगा ले। अब आंखें कहें कि छोड़ो ना, कानों के काम भी मुझे दो, और सो ऑन, आप समझ गए। बास दफ़ा होता क्या है कि मल्टी टास्किंग बंदा देखने में बहुत एक्टिव लगता है, सो एक्टिव, हर जगह ये भी वो भी, और मैं इसको दो नामों से अपने से दूर रखती हूँ, एक है वन मैन शो और एक है लुक बिजी डू नथिंग। घर में देखिए, आप चूल्हे पे दूध रखिए उबलने के लिए और साथ कपड़े भी मशीन में डालें, या तो दूध उबल जाएगा तो या उसमें सब कुछ डाल के बटन दबाना भूल जाएंगे। कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। मसलन क्या, देखिएगा आप, देखिए कि जब आप एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हैं ना, तो पहली बात आप एक्टिव होते हैं, यानी पहले अच्छी बातें बता देती हूँ, आपकी इस्तेदाद में इजाफा होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि सुस्त नहीं होते। और इसमें बेस्ट मिसाल है न्यूबॉर्न बेबी की माँ, जिसके पहले भी दो बच्चे हों, बिलफर्ज, कितनी एक्टिव हो जाती हैं, उसको भी दूध पिला रही, एक का मुंह धुला रही। और ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है कि इस एज की माएँ सबसे ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट होती हैं। लोग कहते हैं ना बच्चों वाली माएँ, मैं कहती हूँ मुझे वही चाहिए। एक तो उनके हाथ में हमारा विरसा, और दूसरी बात है वो एक्टिव होती हैं। और छोटी यंग लड़कियाँ, वो बेचारी टोस्ट पे बटर लगा के आधा पीस खा के आई हैं, वो तो आधी क्लास के बाद वैसे ही डाउन हो जाएंगी। फिर इसी तरह इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी बज़ाहर होती है, इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, पहले सिर्फ देख रहे थे, अब सुनने भी लग गए, पहले बोल रहे थे, अब साथ टेक्निकल भी खुद करने लग गए। और इसी तरह से ऐसा बंदा बज़ाहर उस काम में ज़्यादा फोकस दिखता है, लेकिन कॉन्स क्या हैं? नंबर एक, पस्त मेयार। हमेशा आप कभी भी एक प्यार नहीं रख सकते जब आप दो काम करें। मिसाल दे दी, या रोटी जलती है, या ओवन में मुर्गी जल जाती है, या आपके कपड़े जल जाते हैं इस्त्री करते हुए। फिर इसी तरह से आप देखिए, क्रोनिकल डिस्ट्रैक्शन भी होती है, इससे चीज़ें ताखीर से होने लगती हैं। आप कितनी को जगलिंग करेंगे, और आखिर में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, फिर आप गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं, प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड होती हैं, फिर आखिर आप कहते हैं मैं इनमें से चूज़ करूँ ना, तो आप अक्सर गलत चीज़ चूज़ करते हैं, ये लिख लें अपने पास। और जब आप मल्टी टास्कर होते हैं ना, आप इसको एक मिसाल से समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए। देखिए, जिस्म एक ही है, उसके ऊपर सारी चीज़ें लग गई ना, तो सिस्टम बन जाता है। और आप आंखें लगाएं एक जगह, कान लगें आपके दूसरे बंदे के साथ, जुबान लगे तीसरे के साथ, क्या आपने थोड़ी सी तो साइंस पढ़ी है ना, सारे जिस्म के अज़ाब मिलकर काम करते हैं। एक होता है मल्टी टास्किंग ऑन सेम प्लेटफॉर्म, दिस इज़ रिकमेंडेड। वही बात है कि एक ही जगह खड़े थे, चमचा भी फेर लिया तो साथ ही मशीन से कपड़े भी निकाली, इट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन मल्टी टास्किंग इन डिफरेंट फील्ड, ये वो है जो ऊपर कहा था कि आगे बात आएगी, वो दो के साथ जगलिंग करने में आप खुद ही पता नहीं गोल गोल हो जाते हैं, गोल ही बदल जाता है, बंदे को समझ ही नहीं आती। और एंड पे याद रखिए, वाखज़िरतिल अन्फुसु शुह, नफ्स में जो शुह रखा है ना, एंड पे बंदा चूज़ उसको करता है जिसमें आपका अपना ज़ाती फ़ायदा होता है। अब इसका हल क्या है, इस्लामिक सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, नाकामी है? पहली बात है कि अगर आपको वाकई कभी करना पड़ता, और यकीन किए किया, क्या बताएं कि क्या कुछ नहीं किया। ये जब भी मिसाल दी है ना चाबी लगाने की, तो वो चाबी लगाने से लेके बाद में बत्ती बंद करने तक का काम खुद किया शुरू में। अब तो मैं पीछे पलट कर देखती हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह ये सब हो कैसे गया, ये फसल कैसे बन गई, अल्लाह ये फैक्ट्रियाँ कैसे, एक नहीं कई मिलें कैसे लग गई। ये अल्लाह की देन है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन तवाज़न रखना पड़ता है, फिर आपको कमिटेड रहना है, पुरअज़म संजीदा होना पड़ता है, तवज्जो मरकूज़ कीजिए। और शुरू में हो जाता है जब आप अपने शौक से कोई काम करते हैं ना, बच्चों को भी देखा करें ना, नहीं नहीं मामा हम कर लेंगे, मामा ये शुरू में बड़े अलर्ट, थोड़ी देर बाद ओ मैं सो गई थी, ऐसे ही आंख लग गई, रात सारी जो नहीं सोई। खुलिकल इंसानो दईफा। तो इस बैरियर जिसको आप नॉट हैविंग फुल फोकस एंड कमिटमेंट कहते हैं, ये नामुकम्मल तवज्जो और दिल वाबस्तगी ना होने का जरिया बनती है। बिल आखिर आप थक जाएंगे, शौक पूरा हो गया अब क्या करें, फिर वो मजबूरी बन चुकी होती है। और जगलिंग करने वाला बंदा काम कर लेता है लेकिन चल चलाओ का काम होता है। एक भी आपको बुला रहा है, दूसरा भी बुला रहा है, अब क्या करेंगे, या इधर से झूठे या उधर से सच्चे। सूरत नहल 76 जो मैंने ऊपर जिक्र किया था, इसको आप पढ़ लीजिए। दो में से एक है जिसका एक मालिक है, दूसरे के ज़्यादा मालिक है। तो फिर फोकस, यानी ये जो चीज़ है ना कि हम फोकस्ड नहीं होते, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने सुहेलुल जन्नाह कोर्स किया ना, अगर आप फोकस्ड होके करके आए हैं ना, तो आगे देखिएगा आपको कितने रंग लगेंगे इंशाल्लाह। अगर वो ही नहीं फोकस्ड होके किया, एक पारा किया दूसरा नहीं किया, वो बंदा कभी भी आगे नहीं पहुंचा। मैंने अपने पूरे कैरियर में किसी अधूरे स्टूडेंट को पूरा जिम्मेदार बनते नहीं देखा। जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं ना, कल वो जिम्मेदारान तक पहुंचते हुए भी अच्छे हो जाते हैं। और आप ये लफ्ज़ जो मेरे से सुन रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे कीजिए, मैट्रिक, FA, BA और मास्टर्स, और फिर PhD होल्डर्स, अल्लाह मोहलत देगा तो बनते हैं लोग। बिल्कुल यही तरतीब है, जब मैट्रिक पूरा होता है ना, तो फिर ही अच्छा लगता है FA करना। और FA पूरा कर जाएंगे तो BA से आपको कोई नहीं रोकेगा, और मास्टर्स के बाद रेंगुलर तक अल्लाह आपको ले जाएगा। ये है रूट टू फ्रूट, आगे से आगे जाते रहेंगे। और जो कहते नहीं हमें पहले FA करा दें, नहीं अच्छा मास्टर के लिए क्या BA करना ज़रूरी है, तो वो है आज हमारे इर्द गिर्द। फोकस कीजिए, सारी तवानाई एक काम पे लगाएं, ज़हनी सुकून मिलेगा, दिल दिमाग मुतमईन होगा, तवज्जो देंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक जगह बात सुनी थी, जापानीज़ लोग जब अपनी रिज्यूमे किसी को पेश करते हैं, तो उस पे अमूमन एक ही लफ्ज़ लिखा होता है कि जिधर वो काम शुरू करते हैं ना, यानी जॉब की या बिजनेस किया, किसी कंपनी के साथ मिल गए, वो कहते हैं कि जैपनीज की रिज्यूमे जो होती है उसमें दो जगहों का नाम नहीं होता कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है। हमारे कल्चर में कहते नहीं, बहुत जगह काम करके खूब रगड़ा लगा हुआ, पकड़ लो इसको, सिखा अगलों ने दिए फायदे हम इनसे ले लेते हैं, ये भी लोग करते हैं होशियार कुछ। जैपनीज कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ये शख्स गाली है कि ये बंदा इतनी जगह पे गया, या तो बंदा नहीं अच्छा, तभी तो चलो ने फारिग किया तो आगे चला गया, एक वजह। और दूसरी बात है कि या इसको काम नहीं आता। कहते हैं कि आम जैपनीज जिस जगह अपने कैरियर के शुरू में होते हैं ना, एंड तक वही होता है। और मैंने जो स्टोरी पढ़ी उसमें लिखा था कि कभी कभी क्या होता है कि आप जो बंदा मिसाल है कि मास्टर्स करके एक कंपनी में लग गया, तो 2-4 साल का तजुर्बा लिया, तो दूसरी कंपनी वाले उसको ऑफर देते हैं, मतलब अगर यहाँ 1 लाख पे मिल रही है तो तुम आ जाओ, हम तुम्हें 1.25 लाख देते हैं। तो वो जो बंदा पहुंचे वो कहता है, क्यों, जिसने मुझे शुरू में बर्दाश्त किया गलतियों के साथ, मैं उसको छोड़कर तुमसे 25,000 ज्यादा लेने आ जाऊं, तो ये मेरे करेक्टर के खिलाफ है। ये मुहसब कौमों के उसूल हैं, अल्लाह को मान जाए तो इनसे अच्छा मुसलमान भी कोई ना हो। फिर आप देखिए कि दी बेस्ट थिंग क्या होती है, आप इख्तलाफात भी हैं, झगड़े भी हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कोई एक बंदा नहीं वहाँ अच्छा लगता, कोई एक काम अच्छा नहीं लगता, कोई एक आपकी खिदमत नहीं कोई कबूल कर रहा, फिर भी उधर ही रहे। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि जो उन शादी के बाद तलाक अल्लाह ना करे हो, तलाक के बाद रुजू फौरन हो जाए। क्यों कहा? कि वही शौहर ही बेहतर है उनके लिए, क्यों, कि वही ठीक है, थोड़ी देर अलग रह के देख लिया ना, अब उधर ही आ जाओ। क्यों? कि बंदे को एक दूसरे का मिजाज समझ आ चुका होता है। आग करने का तसव्वुर नहीं है कि आप बेटे को आग कर दें। इसीलिए याद रखिए कि इस्लाम जो बताता है ना आपको, मुझे नस्बतें बदलना, ये पार्टी उसके साथ मिल गई, ये सियासत में अच्छा लगता है, आम लोगों में अच्छा नहीं लगता। काब बिन मालिक, जिनका जिक्र सूरह तौबा में है, सुस्ती की वजह से पीछे रह गए थे गजवे तबूक से, और सच बोलने की वजह से, कहले कि 50 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया उनके साथ। जिन दिनों में उनके साथ ये मामला चल रहा था, तो उस दौर की सुपर पावर थी, उसने खत लिखा इनको, हमें पता चला है तुम्हारे साहब ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। नबी सल्लम की तरफ इशारा था कि सारी जिंदगी तुम उनकी खिदमत करते, बात मानते रहे, और आज एक नहीं मानी या ये तो वो, आओ मेरे पास, हम तुम्हें अपने पास बड़ा ओहदा देते हैं। तो काब बिन मालिक जाके बुखारी में से लफ्ज़ पढ़ ले, मैं तो एक लफ्ज़ आपके साथ बोल देती हूँ। उन्होंने उस खत को फाड़ा और पास ही तंदूर चल रहा था उसमें डाल दिया कि मुझे तुम्हारी ऐसी ऑफर नहीं चाहिए, ये तंदूर में जानी चाहिए। और इसी तरह से बहुत कुछ, एक और बैरियर, बस इंशाल्लाह अब हम चंद मिनट में ख़त्म करते हैं। नॉट हैविंग क्लियर एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये पीछे हो गया, सिर्फ ये एक डिफरेंट फॉर्म थी तो आपके लिए अलग लिख दी है। वाजह नहीं है, मकसद सही नहीं है, हमें पता नहीं कि एंड ऑफ द डे हमने घर लेकर क्या जाना है। बाजार गए, शॉपिंग करते रहे, क्या लेने आए थे याद नहीं। कई लोग लेने कुछ और आते हैं, वापसी पे जाते हैं, कुछ ढेर पकड़ा, क्या हो बोला है, हाँ वो तो याद ही नहीं रहा। दीन के साथ आज यही कर रहे हैं हम, हमें नहीं पता हमने अगले साल कहाँ होना है, 5 साल क्या करना है, 10 साल बाद कहाँ होंगे, किधर काम कर लिया, अब आगे किधर करना है, इस इलाके में करना है, क्या करना है, क्या कोर्स कर लिया, अब क्या करना है। अब देखिए कि एक बंदा टिका रहता है ना, तो उसको पता होता है, उस्ताद को भी पता होता है मैंने इसको क्या देना है, और ये कितने जोगा है ये भी पता है, इससे आगे काम क्या लेना है। इसके बरक्स आप देखिए कि जब हम फोकस नहीं होते तो बहुत सारी गड़बड़े होती हैं, कुछ लोग वही काम बार बार करते हैं। ये जो है ना कि ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं, बस आप मैट्रिक कर चुके, अब आगे आपको क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको उस कॉलेज में जाना है, FSC FA दोनों में से एक चूज करेंगे, इधर की जुबान बोल दूँ तो ए लेवल ओ लेवल। आप बार बार मैट्रिक करते हैं कभी, पहले एक स्कूल से मैट्रिक कर लिया, आप मैं दूसरे से भी कर लूँ, यकीन कीजिए इससे बड़ा आपका खुद को ज़ाया करना नहीं है। आपको वो किताब जो 6th में मुश्किल लगी थी ना, 7th में पहुंचेंगे खुद ही आसान हो जाएगी, और जो 7th में मुश्किल लगी वो 8th में आसान लगेगी, फितरत का असूल है। कोई ये नहीं कहता कि मैं दरख्त हूँ, आप मुझे दोबारा तना बना दो। दरख्त को ये चाहिए कि वो इलाज करे, ढूंढे देखे कि पत्ते और फिर फूल और फल कैसे बनेंगे, आगे बढ़िए। जब आप मुड़ मुड़ के पीछे जाते हैं ना, तो आप तो चमक जाएंगे, दीन नहीं चमकेगा। आज एक बहुत बड़ा डायलमा कह सकती हूँ, और तो कुछ नहीं, और बड़े बड़े समझदार, अक्लमंद, पढ़े लिखे इस चीज़ से मुतासर हो, और ये मरूबियत होती है, पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स होती हैं, इन मशहूर, शोहरत, बड़ा नाम, वो टुकड़ा मिल जाएगा आपको, खूबी आप में जो है वो वही बड़ी हो जाए तो बड़ी बात है। तो याद रखिए कि आप और मैं चाहते हैं कि अच्छे काम करें, प्लान्स बनाइए, गोल्स बनाइए, असूलों की पाबंदी करें, जिम्मेदारियां कबूल कीजिए, आज अपने हाथ से नेकियों के बीज बोएं, टीम वर्क के लिए तैयार रहें, लोग साथी बनाइए, मशवरे कीजिए, मैं को हम में बदलिए। नफामंद बनते हैं तो उल्टी तरफ से इन कामों को शुरू कर दें। दीन का काम ऐसे सटपटे का काम नहीं है, सवाब बराए सवाब नहीं है। आज हम में से अक्सर टीचर सिर्फ सवाब के लिए पढ़ाते हैं, या कहते हैं चलो कुछ हमारी आखिरत बन जाए, ना स्टूडेंट्स को आपने पूरी चीज दी और ना ली। और मैं एक जुमला फिर बोलती हूँ, शायद किसी को मिल जाए, क्लास और कोर्स में यही फर्क है, क्लास वन मैन शो होता है, कोर्स में टीम होती है, क्लास आपका जाती मंसूबा है, कोर्स एक इदारे से होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इदारे कायम नहीं कर सके, मिसाल दे देती हूँ, 10 टीचर हैं एक शहर में, 10 ही पढ़ा रही हैं, अच्छी बात है, सवाब भी होगा, अजर भी मिलेगा, लोगों के दिल भी बदले। आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पौधा लगाएं कि जो आपके बाद हर साल या हर महीने फसलें दें। और मुझे एक ख्वाब याद आता है जो मैं कभी नहीं आपसे शेयर करूंगी, और जब मुझे अल्लाह ने ये ख्वाब दिखाया था ना, मैं कहती हूँ कि वो टुंड मुंड दरख्त क्या छोड़ दीजिए, कच्चा सा तना भी नहीं था, ये आपका नूरुल कुरान, वल्लाही। और वो जो ख्वाब अल्लाह ही दिखाता है, जो अल्लाह के हुक्म है, कौन देख सकता है किसी, आज भी ऐसे जैसे रोज़े रोशन की तरह आंखों में। कामयाबी मैंने अल्लाह से सीखी है, अल्लाह ने इशारों से बताई हैं ये बातें, एक सर डाल के बैठो, इस रास्ते में कुर्बानियाँ देनी पड़े तो दीजिए, हिजरतें करनी पड़े तो करें, अपने आप को छोटा करके सबको, अपने छोटों को बड़ा कर दें तो करिए, फिर अपने प्लान्स देखिए। आज से 2 साल बाद मैं कहाँ होंगी, सीखने का अमल जारी रखिए, आसन दर्जे के कामों के लिए तैयार रहें, मुकम्मल तवज्जो और जिम्मेदारियाँ निभाते सर डाल के जहाँ अल्लाह ने आपको डाल दिया, इसी में अगर आपकी मेरी जान भी चली गई तो मुसब बिन उमैर की तरह पहले ही साल में अगर चले गए हजर के बाद बदर में, तो वो नाकाम नहीं थे, और बहुत सारों ने तो फतेह मक्का देखी कोई नहीं। जब ओहद के 70 शहीद थे, क्या उन्होंने फतेह मक्का का झंडा पकड़ा? नाम नहीं रहते, अजर बाकी रहेगा। तो तजिया कीजिए, मशवरे कीजिए अच्छे तरीके से। और अगर इन बातों को सुनकर किसी के दिल में कोई ऐसा ख्याल भी आए ना कि उनकी हेल्प की जाए, तो मैं हाजिर हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग भी आपकी मदद करने को तैयार हैं, अगर कुछ कर सके। नहीं है तो जो आप कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह कबूल भी करे, और अल्लाह ज़ाया नहीं करता। ये याद रखिए, आप अलिफ बाता बच्चे को सिखाते हैं वो भी ज़ाया नहीं होती, ए बी सी डी सिखाया आपके टीचर ने वो भी ज़ाया नहीं हुआ, 1+2, 2+3 आपके टीचर ने सिखाया, आज आप विरासत के अहकाम समझते हैं, ज़ाया नहीं होता। बस अपने आप को पेश कीजिए। और आखिरी बात जो मुझे फ्रूट लगता है, और फ्रूट के बाद दोबारा बीज है, दीन सीखने के बाद, यानी मैं अपने प्यार से बोल देती हूँ कि दौरे कुरान के बाद, शॉर्ट कोर्सेज के बाद, सबीलुल जन्ना करने के बाद, नुरुला नूर, नुरुला नूर करने के बाद इल्मुन नाफिया, और उसके बाद मजीद जिम्मेदारियाँ लेते लेते हर चीज़ के पीछे एक बात याद रखिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान हूँ, इसीलिए नमाजी। अभी तो ज़ाती नमाजें नहीं लोगों की सही हो सकी, हमने लोगों को क्या दिया, दीन तो अभी साइड पे पड़ा। इतने लोग, जैसे मैंने कहा ना कि 10 टीचर है ना एक शहर में, वो 10 मिलकर एक इदारा खुदा के लिए बना लें। किसी को रिसेप्शन पे बैठना पड़ेगा, मुझे पता है टीचर की कुर्सी से उठ के रिसेप्शन पे बैठने को लोग कहते हैं, लो जी मैं, हर एक को टीचर बनने का शौक है। आप रिसेप्शन पे बैठे, आप बच्चों को उठा लें, आप किसी के लिए एक ब्रेक में खाना बनाकर 10 लोग मिलकर एक इंस्टीट्यूट बनाइए, आपकी नस्लें आपके लिए दुआएं करेंगी, और आप उस शहर की दुआएं बनेंगी, आप उधर के अबर बनेंगे। फिर जो दुआएं मिलेंगी ना आपको, उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। आज ज़रूरी है दीन के काम को प्रोडक्टिव काम करने की। आज हमें अफराद की कोशिशों की नहीं, हमें इज्तमाई कोशिशों की बात करनी है। आज सुबह की मीटिंग में भी बात हुई कि जब हमने वो कोर्स शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ उनमें एक ऐसी सिस्टर आई जो मुझे इन्होंने बताया कि ये पहली घर में पढ़ाती हैं, बच्चे भी आते हैं या बड़े भी कहते हैं। मैंने कहा आने दें बिस्मिल्लाह खुशी, और उनको साथ बिठाया कि आप आई हैं। और ये यहाँ एक जगह की नहीं, ये 3-4 लोग मुझे अभी भी याद आ गए हैं, बल्कि एक ऐसी जगह थी कि वो मदरसा था उनका, माशाल्लाह ये जोहराबाद की बात है, वो मदरसा चलाती हैं, वो भी आ गई, और आज उनके पूरे साथी साथ हैं। सीख के वापस गई, वो उनके अपने मदरसे की सारी कमियां दूर हो गई। लेकिन जिनकी बात कर रही हूँ कि अल्लाह ने उनको जमा लिया, और मेरा दिल करता है मैं उनसे पूछूं, सुनाए अकेली पढ़ा रही होती, बल्कि फिर जो अकेले पढ़ा रहे होते ना वो दूसरों से दूर करते हैं आपको, हाँ हमारे मुकाबले पे आ गए, हमारे स्टूडेंट ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो शिकवे गिले दीनदारों के ना, मेरे स्टूडेंट तुम्हारे, तुम उसको ले गए, ये दीन नहीं है। वल्ला ही माफ़ कीजिएगा, आप कोई दीन की खिदमत नहीं कर रहे, आप अपनी कर रहे हैं कि आपका सदका जारिया हो। तो अल्लाह ताला आपको मुझे माफ़ करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तूब इलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।